नमस्कार भारत, 9 जनवरी दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कथित इस्लाम के नाम पर पुलिस पर जानलेवा हमला।
The suspect in question is a 30-year-old male from Yaton. He has a Philadelphia address as well, I believe. He has confessed to committing this cowardly act in the name of Islam.
पठानकोट पर हमले पर पाकिस्तान ने कहा भारत के साथ सहयोग किया जाएगा। वहीं कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान का सूबा बनाने की तैयारी, करेंगे इस खबर का विश्लेषण।
भारत का संवैधानिक जो स्थिति है वो ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, जो कि जबरदस्ती किया गया है।
खेल खिलाड़ी और इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में कथित तौर पर इस्लाम के नाम पर एक हमलावर ने एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला किया है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधिकारी जेसी हार्टनेट पर हमलावर ने उस समय गोलियां बरसाई जब वे पुलिस कार के अंदर बैठे थे और कार चौराहे पर रुकी हुई थी। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हमलावर एडवर्ड आर्चर ने कबूल किया है कि वे चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैं और उन्होंने यह हमला इस्लाम के नाम पर किया है। जर्मनी के कोलोन में नए साल के जश्न के दौरान हुई हिंसा, चोरी और महिलाओं के साथ बदतमीजी की घटनाओं को पुलिस टुकड़ी ने जिस तरह संभाला, उसकी निंदा के बाद कोलोन के पुलिस प्रमुख वुल्फगैंग अल्बीर्स को निलंबित कर दिया गया है। शरणार्थियों का खुलकर स्वागत करने की नीति का पालन करने वाले जर्मनी में इस घटना के बाद बहस छिड़ गई थी। जर्मन पुलिस यूनियन के प्रमुख राइनर वेंट ने कहा,
Das war ein notwendiger Schritt zur richtigen Zeit.
यह सही समय पर लिया जाने वाला एक जरूरी कदम था। कोलोन के पुलिस प्रमुख ने गलत संदेश दिया था क्योंकि उन्होंने अधूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी थी और उसे सही भी नहीं किया। इसका कर्मचारियों पर और कोलोन में पुलिस की प्रतिष्ठा पर खराब असर पड़ा और इससे पुलिस कर्मचारियों के बीच और जनता के बीच अनिश्चितता भी बनी। ये थे जर्मन पुलिस यूनियन के प्रमुख राइनर वेंट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के विकल्पों पर एक समिति काम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्यमंत्री हफीजुर रहमान ने बीबीसी हिंदी सेवा को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस सिलसिले में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि समिति कुछ दिनों में अपनी सिफारिशें पाकिस्तान सरकार को भेजेगी। भारत पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है। बिहार के दक्षिण में औरंगाबाद जिले के ढिबरा इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मिस्र के लाल सागर में रिजॉर्ट सिटी हुरगाड़ा के एक होटल पर बंदूकधारियों के हमले में 3 विदेशी पर्यटक घायल हुए हैं। घायल पर्यटक डेनमार्क और जर्मनी के बताए जा रहे हैं। देश के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि हमलावर समुद्र के रास्ते पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मार दिया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेन्या नियटो ने घोषणा की है कि देश का सबसे खतरनाक ड्रग तस्कर कोअकिन गुस्मैन लॉयरा, जिसे एलचेपो के नाम से भी जाना जाता है, पकड़ लिया गया है।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करें संदीप सोनी का। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में कथित तौर पर इस्लाम के नाम पर एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने कथित हमलावर को पकड़ने का दावा किया है और वो चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट का समर्थक बताया जाता है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
फिलाडेल्फिया शहर में पुलिस के अनुसार 33 वर्षीय पुलिस वाले जेसी हार्टनेट को हमलावर ने उस समय पिस्तौल से गोलियों का निशाना बनाया जब पुलिस वाला पुलिस की कार के अंदर बैठा था और कार चौराहे पर रुकी थी। पुलिस का कहना है कि एडवर्ड आचर नामक 30 वर्षीय हमलावर ने अपने बयान में कहा है कि उसने यह हमला इस्लाम के नाम पर किया है और यह भी कि वो चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट का समर्थक है। فلاڈلفیا کے پولیس کمشنر رچرڈ راس نے حملہور کے بیان کے بارے میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا،
The suspect in question is a 30-year-old male from Yaden. He has a Philadelphia address as well, I believe. He has confessed to committing this cowardly act in the name of Islam.
سندگدھ حملہور نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے اسلام کے نام پر یہ بزدلانہ کام کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ پولیس والے ان قانونوں کا بچاؤ کرتے ہیں جو قرآن کی تعلیم کے ورد ہیں. پولیس کمشنر کا کہنا تھا کہ حملہور نے پولیس والے کو قتل کرنے کے ارادے سے ہی نزدیک سے گولیاں ماری تھیں. حملے میں پولیس والے کو بائیں بازو میں 3 گولیاں لگی ہیں اور اس کو گہرے زخم لگے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ 9mm کے جس پستول سے حملہ کیا گیا وہ 2013 میں ایک پولیس والے کے گھر سے چوری کی گئی تھی. حملہور سے پوچھ تاچھ کرنے والے ایک پولیس افسر نے پترکاروں کو بتایا کہ حملہور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ چرمپنتھی گٹ اسلامک اسٹیٹ کا حمایتی ہے اور اللہ کو مانتا ہے، اور اس نے بندوق سے حملہ اپنے دھرم کو مانتے ہوئے کیا ہے. لیکن فلاڈلفیا شہر کے میئر جم کینی نے اس مدے پر صفائی پیش کرنے کے انداز میں کہا کہ حملہور کے کام کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی سمبندھ نہیں ہے. میئر جم کینی نے پریس کانفرنس کے دوران حملہور کے بارے میں کہا،
This is a criminal with a stolen gun who tried to kill one of our officers. Has nothing to do with being a Muslim or following the Islamic faith.
یہ ایک اپرادھی ہے جس نے چوری کی ہوئی پولیس کی پستول سے ہمارے ایک پولیس والے کو قتل کرنا چاہا. اس بات کا کسی کے مسلمان ہونے یا اسلام دھرم پر چلنے سے کوئی سمبندھ نہیں ہے. یہ تھے فلاڈلفیا کے میئر جم کینی کے شبد. گروار کی رات قریب 11 بجے کیے گئے اس حملے میں پولیس دوارا جاری کیے گئے ایک ویڈیو میں حملہور کو پولیس کی کار پر گولی چلاتے دیکھا بھی جا سکتا ہے. اب پولیس فلاڈلفیا شہر اور یڈون علاقے میں استھت حملہور کے گھروں پر چھاپے بھی مار رہی ہے اور یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس حملہور کے ساتھ اور لوگ بھی جڑے ہیں. گروار کو ہی امریکہ کے ٹیکسس اور کیلیفورنیا راجیوں میں 2 سندگدھ اسلامک اسٹیٹ کے چرمپنتھی بھی پکڑے گئے ہیں. ادھر نیویارک شہر میں پولیس وبھاگ نے فلاڈلفیا شہر میں پولیس والے پر حملے کے بعد ایک میمو جاری کر کے شہر میں پولیس والوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ چرمپنتھی گٹ اسلامک اسٹیٹ نے اپنے سمرتھکوں کو پولیس والوں اور امریکی فوجیوں اور گپچر ادھیکاریوں کو بھی حملے کا نشانہ بنانے کو کہا ہے، اس لیے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے. نیویارک میں چرمپنتھی حملوں کے خطرے کے تحت 9 ورش کی شروعات سے ہی سرکشا اور کڑی کر دی گئی ہے. سلیم رضوی، نیویارک.
پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کی ادھیکشتا میں اسلام آباد میں کل ایک بیٹھک ہوئی ہے. اس بیٹھک سے ٹھیک ایک دن پہلے بھارت نے کہا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے کے سمبندھ میں کارروائی کے لیے ضروری ثبوت پاکستان کو دے دیے گئے ہیں. اس بیٹھک کے بارے میں اور جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے اسلام آباد میں بی بی سی اردو سیوا کے ہارون رشید سے بات کی.
جو سرکاری بیان جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں جس میں سینا کی کافی ہائی کمان جو سینا کے سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف، آئی ایس آئی کے چیف، ڈی جی ایم او، یہ سارے اس میں موجود تھے. سیاسی لیڈرشپ بھی ملک کی موجود تھی، پرائم منسٹر کے علاوہ وزراء اور سینئر ایڈوائزرز ان کے اس میں موجود تھے. تو جو ان کا فیصلہ، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پٹھان کوٹ کے معاملے پہ جو معلومات دی گئی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ پراپرلی کیا جائے گا، انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے گا اس میں. اور ایک جو کافی اہم جملہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ٹیررسٹ کو آتنکواد کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھنا یہی ہوگا کہ اگلے 1-2 دن میں اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں.
جب بھی کبھی بھارت میں ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے جس میں سیما پار کے چرمپنتھیوں کی بات آتی ہے تو بھارت پاکستان کو ثبوت دینے کی بات کرتا ہے اور پاکستان بھی اس طرح کا ایک بھروسہ دیتا ہے، تو اس بار آپ کچھ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں کیا؟
ابھی پاکستان کا جو یہ بیٹھک بھی ہوئی ہے اور جو پاکستان نے اب تک اس پہ بیانات دیے ہیں اس میں ابھی تک جو انڈیا کہہ رہا ہے کہ ایکشنیبل جو ایویڈنس دیا ہے پاکستان کو اس کی صحت کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی ہے کہ وہ کتنے سالڈ ایویڈنس ہیں یا نہیں ہیں.
پاکستان کی سینا کی اس سمے کیا بھومکا ہے؟
دیکھیں، یہ جو پردھان منتری نواز شریف کی صدارت میں بیٹھک ہوئی ہے اس میں سینا کی تمام ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی اور یہ جو بیان انہوں نے جاری کیا ہے دونوں کا اس پر اتفاق نظر آتا ہے. لیکن فی الحال تو دیکھنا یہ ہے کہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہی سب سے بڑا دونوں کے سامنے سوال ہوگا.
سوال اب بھی یہی ہے کہ کیا پاکستان بھارت کی طرف سے دیے گئے ثبوتوں کے آدھار پر کارروائی کرے گا یا نہیں. پٹھان کوٹ حملے پر پردھان منتری نواز شریف کی بیٹھک کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے اسلام آباد سے ہارون رشید. اور دوسری طرف پاکستان پرشاست کشمیر کے گلگت بلتستان کے مکھیہ منتری حفیظ الرحمان نے بی بی سی ہندی سیوا کو دیے ساکشاتکار میں کہا ہے کہ اس علاقے کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. پاکستان پرشاست کشمیر کو بھارت اپنا حصہ کہتا ہے और गिलगित बल्टिस्तान इसी हिस्से में हैं। पाकिस्तान की किसी ऐसी कोशिश का भारत पर क्या असर पड़ेगा? वात्सल राय ने पूर्व राजनयिक विवेक काटजू से यही सवाल पूछा।
भारत पर तो इस पर कोई असर नहीं होगा। भारत का संवैधानिक जो स्थिति है वो ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, जो कि इलीगल है, जो कि जबरदस्ती किया गया है, और शिमला समझौते के तहत भारत ने ये स्टैंड लिया है कि इस मसले का जो समाधान है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बातचीत के जरिए होना चाहिए। तो भारत के नजरिए में इसमें कोई फेरो बदल नहीं है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी फिक्शन करे, लेकिन वास्तविक रूप में तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का अंग ही रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत का वहां पर बोलबाला रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत खुद उस पर शासन करती रही है 1947 से, जब से उन्होंने ये हिस्सा, भारत का ये हिस्सा हड़पा।
भारत और पाकिस्तान लगातार अपने रिश्तों की बेहतरी की बात कर रहे हैं। पठानकोट पर हुए हमले के बाद भी रिश्तों को आगे ले जाने की बात है, उसको पूरी तरीके से दरकिनार नहीं किया गया है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि बातचीत बहाल होती रहे। उस समय में अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो क्या भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर कोई असर इसका हो सकता है?
कश्मीर का मसला जो है, इस पर बातचीत, जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग अब स्कीम बनी है, जब भी वो लागू होगा तो उस पर जम्मू कश्मीर के मामले में भारत अपना पक्ष रखेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है जो भारत का पक्ष है वो भारत के संविधान के तहत होगा। जो भी भारत का संविधान कहता है उससे तो कोई सरकार आज की सरकार नहीं, उसके पहले की सरकार भी हट नहीं सकती, वो तो भारत का संविधान।
भारत सरकार इस मामले में अपने संविधान का पालन करेगी। ये थे पूर्व राजनयिक विवेक काटजू।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख कर रहे हैं भारत का, जहां बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इस खबर पर और जानकारी के लिए बिहार की राजधानी पटना से नीरज सहाय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं, मुठभेड़ खत्म हो गई है या अभी भी जारी है?
जी संदीप, घटना कल शाम 5:30 बजे की है। सीआरपीएफ और बिहार पुलिस के जवानों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ माओवादी जो हैं वो औरंगाबाद जिले के ढीबरा के जंगलों में किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं, और इसके बाद से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू की गई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, उसमें 5 नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके साथ साथ AK-47 SLR कार्बाइन आदि असलहे भी बरामद किए गए हैं। इसकी पुष्टि कल शाम मेरी बात हुई थी सीआरपीएफ के आईजी अरुण कुमार जी से, उन्होंने इसकी पुष्टि की। वहीं कल देर शाम मैंने बिहार पुलिस के डीजीपी पीके ठाकुर जी से बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि इलाका पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए सर्च ऑपरेशन जो है, और चूंकि रात का समय हो गया था और सुबह में भी धुंध काफी रहेगी, इसलिए पौ फटने के बाद फिर और सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे, और कितने हताहत होने की बात आती है इसकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और इधर एक बात और इम्पोर्टेंट ये आई है कि सीआरपीएफ के एक हवलदार के कंधे में भी गोली लगी है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
जी, ये थे पटना से नीरज सहाय।
बीबीसी इंडिया बोल।
फिल्म स्टार आमिर खान को पर्यटन विभाग के कैंपेन अतुल्य भारत से हटाया गया। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया। क्या ये फैसले ठीक हैं या फिर बदले की कार्रवाई? असहिष्णुता पर बहस खत्म नहीं हुई है, इसीलिए इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 9 जनवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप। आज है 9 जनवरी दिन शनिवार। कार्यक्रम में आगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की समीक्षा, लेकिन पहले दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं बताने के लिए मानसी दास स्टूडियो में आ चुकी हैं।
सबसे पहले लेते हैं जनसत्ता अखबार को। अखबार की बड़ी खबर है, सलविंदर दिल्ली में तलब हो सकता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट की संभावना से भी इनकार।
सलविंदर पठानकोट के SP
जी। उसी के बगल में छपी है दिल्ली के सम विषम योजना पर एक खबर। 1 जनवरी से लागू हुई इस योजना के भविष्य पर दिल्ली हाईकोर्ट 11 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। अखबार में सबसे नीचे है लोकसभा सदस्य सुप्रिया सूले का सदन में साड़ी पर चर्चा वाला बयान, जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा था कि सदन में लंबी चर्चाओं के दौरान सांसद आपस में गपशप करते हैं और साड़ियों जैसे विषयों पर भी बात करते हैं। नई दुनिया की बात करें तो नई दुनिया के पहले पन्ने पर खबर है पठानकोट एयरबेस की एक तस्वीर के साथ, और लिखा है NIA ने पहले चरण की जांच में तैयार किया है ब्लूप्रिंट और एयरबेस के भीतर से चरमपंथियों को मिली थी मदद। एक बॉक्स न्यूज़ पर भी मेरी नज़र जा रही है, जिसमें लिखा है कि मुंबई पुलिस ने शाहरुख और आमिर की सुरक्षा घटाई। दोनों अभिनेता हाल में असहिष्णुता को लेकर दिए बयान के कारण विवादों में आए थे। सबसे नीचे एक और खबर है विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी के बारे में, जो कि लगातार तीसरे साल बने हैं सबसे बड़े भारतीय दानी। अखबार कहता है कि उन्होंने शिक्षा के लिए 27,514 करोड़ रुपयों का दान किया है। इसमें दूसरे पायदान पर हैं नंदन नीलेकणी और छठे पर हैं मुकेश अंबानी। दैनिक भास्कर की बात करें तो पहली खबर है कि स्टंट के दौरान 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर फ्रांस के मशहूर डेयर डेविल तैंक्रेदे मेले की मौत। उन्होंने अपनी मौत के पहले कहा था कि आज़ादी की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता।
बहुत शुक्रिया, और आइए अब मानसी दास से ही सुन लेते हैं आज क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पठानकोट का दौरा कर सकते हैं। पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना अड्डे पर कुछ दिन पहले चरमपंथियों ने हमला किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज झारखंड का दौरा करने वाले हैं। वे हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और रांची में झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वर्ष 2016 का विश्व पुस्तक मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत विषय पर आधारित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक रत्नाकर शेट्टी आज बिहार सरकार से राज्य में क्रिकेट को पुनर्जीवित करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2000 में विभाजन के बाद बिहार ने BCCI में अपनी पूर्ण सदस्यता और मतदान का अधिकार खो दिया था। भारत में फुटबॉल आई लीग आज से कोलकाता में शुरू हो रहा है। इसमें कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी और चैंपियन टीम को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
हर शनिवार की तरह वक्त हो चला है आज ये जानने का कि इस शुक्रवार कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं और ये फिल्में कैसी हैं। फिल्म समीक्षक अर्णव बनर्जी के साथ।
नए साल में एक बार फिर से नई फिल्म के साथ मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, और मेरे साथ हैं
अर्णव।
अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है नए साल में आपका। और हम बात करते हैं जो नई फिल्म इस साल रिलीज हुई है, यानी कि हाथी घोड़े वाली कहानी।
जी हाँ, विधु विनोद चोपड़ा की एक फिल्म आई है जो उनकी प्रोड्यूस्ड फिल्म है वजीर, जो कहानी उन्होंने 30 साल पहले लिखी थी और बहुत साल पहले बनाना चाहते थे, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। कि और साथ में फरहान अख्तर भी हैं, जो खुद डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। फरहान ने एक ATS सिपाही का रोल किया है, बहुत फिट हैं वो, देखने में बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहीं वेट गेन किया है तो कहीं लूज भी किया है, और बाल उनके बहुत बिल्कुल जैसे कि होने चाहिए एक इस तरह के योद्धा के, उस तरह से रखे गए हैं। अमिताभ बच्चन बनावटी लगे हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी शख्सियत हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी नए किरदार में आए। देखिए, फिल्म थ्रिलर है और एज ऑफ द सीट है कहीं कहीं फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में पूरा जो थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं जब कहानी अनरैवल करने लगती है। मैं वजीर को 5 में से 2.5 दूंगा।
चलते हैं अब दूसरी फिल्म की तरफ।
चौरंगा एक नए डायरेक्टर की फिल्म है, विकास। जिसको कि प्रोड्यूस किया है कई सारे लोगों ने, फॉरेन फंडिंग भी आई है और संजय सूरी और ओंदिरी ने प्रोड्यूस किया है। चौरंगा यानी चार रंग, एक बिहार और झारखंड की एक छोटे से गांव की कहानी है। बहुत स्टार्क फिल्म है, यानी दलितों पर हमारे यहाँ बहुत कम फिल्म बनी है। दो बीघा ज़मीन ले लीजिए या अंकुर या गिनी चुनी शायद 5 से 6 फिल्में दिखाई देंगी आपको। इसके अलावा हम ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं कि दलितों की भी एक ज़िंदगी हो सकती है, या जो शोषण होता है या एक्सप्लॉयटेशन होता है किस हद तक हो जाता है। संजय सूरी एक छोटे से गांव में एक सेठ हैं और उसके साथ उनके यहाँ काम करती है तनिष्ठा चैटर्जी का कैरेक्टर, जिसके दो बच्चे हैं, एक शहर में पढ़ता है एक सुअर वगैरह देखता है। यानी वो लोग इतने गरीब हैं कि वो लोग सुअर वगैरह देखते हैं सेठ के, और रात में यानी संजय सूरी खुद तनिष्ठा के कैरेक्टर जिसका नाम है धनिया उसको एक्सप्लॉयट करता है। यानी उसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो इतनी गरीब है, वो उनके रहमो करम पे रहती है। लेकिन सुबह उठ के संजय सूरी जो हैं, जो सेठ हैं, वो सब कुछ ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है और तनिष्ठा अगले दिन काम पे चली जाती है। एक तरह से वो फ्री भी है क्योंकि एक इस तरह की लड़की दिखाई गई है जो कहीं ना कहीं अपने ही जो डिसीजंस लेती है, लेकिन उसका असली मकसद है अपने बच्चों को पढ़ाना और अच्छी ज़िंदगी देना, वो शायद उसके बस में नहीं है, इसलिए वो चाहे सेठ पे निर्भर करती है। कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब छोटा बेटा उसका सेठ की ही बेटी को एक लव लेटर लिखता है। अब सेठ का बेटा तो ब्राह्मण है, बहुत ऊंचे परिवार से संबंध रखता है, और यह है दलित। यहाँ से शुरू होती है लड़ाई, और इसके साथ उस बच्चे के साथ क्या होता है, तनिष्ठा के साथ क्या होता है, और उसके बड़े बेटे के साथ क्या होता है, किस तरह से गांव में लोग इस तरह से शोषण करते हैं और उसके बाद ऐसा करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इस पे चौरंगा आधारित है। बहुत स्टार्क फिल्म है, यानी ऐसी फिल्म जो बिल्कुल सच्चाई हमें दर्शाती है, और बहुत सारे लेयर्स हैं फिल्म में। यानी वहीं पर तब्दीली भी दिखा रहे हैं किस तरह से गाँव में आ रही है, लड़की साइकिल चला आ रही है, बिजली आ रही है, कहीं बिजली है कहीं नहीं है, यानी धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन दलितों की जो जिंदगी है वो अभी तक वैसी ही है, ये दिखाने की कोशिश की है।
चौरंगा को भी नंबर देते हैं?
जी हाँ, चौरंगा में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, शायद इतने सारे उसमें जो इश्यूज लिए गए हैं बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, उसको शायद एक 105 मिनट्स की फिल्म में वो दिखा नहीं पाए, इस वजह से फिल्म बिखर जाती है, तो इसको इसलिए मैं चौरंगा को भी 5 में से 2.5 दूंगा।
और अगर हम ऑडियंस की बात करें तो दोनों बॉक्स ऑफिस की खिड़की पे कहाँ भीड़ ज्यादा होगी?
बिल्कुल जाहिर है कि फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन ये सोच के ना जाए कि कुछ शतरंज की बाजी देखने को मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि वजीर में जो सेकंड हाफ है वहाँ पे डिप कर जाती है फिल्म, और वो जो थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। हाँ, मानव कॉल को देख सकते हैं।
यानी कि यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि प्यादे बहुत मिले मगर वजीर ना मिला।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने बिल्कुल अच्छा समअप किया इसको।
और फिल्मों की समीक्षा के बाद अब वक्त हो चला है साप्ताहिक खेल खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही भारतीय क्रिकेट टीम ने कल पर्थ में खेले गए अभ्यास मैच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 11 को 74 रन से करारी मात दी। 20-20 ओवर के इस मुकाबले में भारत ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 193 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी। उनके सलामी बल्लेबाज ट्रेविस ब्रिट ही जमकर बल्लेबाजी कर सके और उन्होंने 60 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 74 रन बनाए। भारत के बरिंदर सरन ने 24 रन देकर 2, रविंद्र जडेजा ने 13 रन देकर 2 और अक्षर पटेल ने भी 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शिखर धवन के 74 और विराट कोहली के भी 74 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। शिखर धवन ने अपनी 74 रनों की पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही रन बनाकर काफी खुश हैं।
काफी खुशी हुई कि यहाँ आके प्रैक्टिस मैच में रन बनाए तो कॉन्फिडेंस मिलता है एक, और अच्छी बात ये रही कि यूज टू हो गया मैं पिच के, और जितना टाइम स्पेंड किया उतना ही मिले वो यूजफुल है और आगे आने वाले मैचेस में मिले काम में आएगा।
तो अभ्यास मैच जीतकर भारत ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत की। दूसरी तरफ भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा से ही दूसरी टीमों को कड़ी टक्कर देती आई है।
ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो काफी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलती है, सो इट विल बी गुड फॉर आवर टीम ऑल्सो। लास्ट टाइम अगर सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें तो सेमीफाइनल के अलावा हमारे लिए काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा था। अभी जाके हम कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद पर्थ विद अ फ्यू यंगस्टर्स अराउंड जिनको चांस मिलेगा इस टूर्नामेंट में और बायलैटरल सीरीज में।
उल्लेखनीय है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को पर्थ में ही खेला जाएगा। और अब बात टेनिस की। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं, जहां शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर का सामना 8वीं वरीयता हासिल डोमिनिक थीम से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में 4थी वरीयता हासिल कनाडा के मिलोस रॉनिक 7वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया के बर्नार्ड टॉमिस से खेलेंगे। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में रॉजर फेडरर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-7, 6-4 से और डोमिनिक थीम ने क्रोएशिया के मारिन चिलिच को 2-6, 7-6, 6-4 से मात दी। उधर महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजरेंका का सामना अमेरिका की सामांथा काउफोर्ड से हुआ। अजरेंका ने काउफोर्ड को 6-0, 6-3 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब फाइनल में उनका सामना जर्मनी की एंजेलिक कर्बर से होगा, जिन्होंने सेमीफाइनल में स्पेन की कार्ला सुआरेज नुहारो को आसानी से 6-2, 6-3 से हराया। वहीं महिला युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना जर्मनी की एंजेलिक कर्बर और आंद्रिया पेतकोविच की जोड़ी से होगा। उधर चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका और तीसरी वरीयता हासिल फ्रांस के बेनोट पियरे सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल में वावरिंका ने स्पेन के गुइलेर्मो गार्सिया लोपेस को 6-4, 6-4 से और पियरे ने इटली के थॉमस फेबियानो को 6-4, 7-5 से मात दी। पुरुष युगल वर्ग में भारत के लिएंडर पेस को तब बड़ा झटका लगा जब उनके जोड़ीदार स्पेन के मार्सेल ग्रानुलर्स चोटिल होने के कारण क्वार्टर फाइनल में नहीं उतरे और उन्हें अपनी विरोधी जोड़ी को वॉकओवर देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कल भारत के रामकुमार रामानाथन अल्जाज बिडेने से 6-7, 6-4, 6-3 से हारकर बाहर हो गए। वहीं प्रीमियर बैडमिंटन लीग में कल दिल्ली एसर्स ने बेंगलुरु टॉप गन्स को 5-2 से हरा दिया। दिल्ली की जीत में अजय जयराम और राजीव औसेफ ने एकल मुकाबले जीतकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर रूस के ही एक नागरिक ने गुस्सा निकाला है और ये गुस्से वाला वीडियो वायरल हो गया है। रूस के अरेनबर्ग इलाके का मामला है, जहां पर बेहद सर्द मौसम में मदद के लिए घंटों इंतजार करने वाले एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति पुतिन की ये कहकर आलोचना की है कि रूस देश से बाहर मदद भेजता है लेकिन अपने ही लोगों को नहीं बचा पाता। क्या है ये पूरा मामला, इस खबर को पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और इसके साथ ही वक्त हो चला है नमस्कार भारत में आपसे विदा लेने का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में कथित तौर पर इस्लाम के नाम पर एक हमलावर ने एक पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला किया है। जर्मनी के कोलोन में नए साल के जश्न के दौरान हुई हिंसा, चोरी और महिलाओं के साथ बदतमीजी की घटनाओं को पुलिस टुकड़ी ने जिस तरह संभाला, उसकी निंदा के बाद कोलोन के पुलिस प्रमुख वुल्फगैंग अल्बीर्स को निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान इलाके को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का प्रांत बनाने के विकल्पों पर एक समिति काम कर रही है। गिलगित बल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हफीजुर रहमान ने बीबीसी हिंदी सेवा को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। बिहार के दक्षिण में औरंगाबाद जिले के ढिबरा इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 नक्सलियों की मौत हो गई है। मिस्र में लाल सागर में रिजॉर्ट सिटी हुरगाड़ा के एक होटल पर बंदूकधारियों के हमले में 3 विदेशी पर्यटक घायल हुए हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिको पेनिया नियेटो ने घोषणा की है कि देश का सबसे खतरनाक ड्रग तस्कर कोअकिन गुस्मैन लोयरो, जिसे एल चेपो के नाम से भी जाना जाता है, उसे पकड़ लिया गया है। चरमपंथी गुटों जैसे इस्लामिक स्टेट और अन्य चरमपंथी समूहों के ऑनलाइन प्रचार से निपटने के लिए अमरीका एक नई टुकड़ी का गठन करेगा। यह नई टुकड़ी अमरीकी आंतरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत होगी और अन्य केंद्रीय और स्थानीय एजेंसियों से मदद लेगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक 1 घंटे के बाद। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।